अभी बाबा का तो पार्ट, टीचर का पार्ट भी बंद हो गया है ना, तो अभी सद्गुरु का पार्ट चल रहा है, समय नजदीक है। तो हमारा चाल चलन व्यवहार, तो उससे ही हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हमारा चेहरा देख करके, हमारा व्यवहार देख करके, हमारा स्थिति देख करके दूसरों को प्रेरणा मिले, भाई इन लोगों के पास क्या चीज है, ये लोग सदा खुश है, संतुष्ट है, तो वही व्यक्ति अपना चेहरा द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है जो प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता का आधार कौन प्रसन्न रह सकते हैं, जो संतुष्ट है वो ही प्रसन्न रह सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे तीन प्रकार के सर्टिफिकेट लेना है, स्वयं से, बाप से और परिवार से संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेना है। क्यों हम असंतुष्ट हो जाते हैं, कारण क्या है? जीवन में असंतुष्ट होने का या चेहरे में मुरझाई आने का, घबराहट आने का, टेंशन होने का, असंतुष्ट होने का कारण क्या है? इच्छा ये ज्यादा है और नहींपन, दूसरों की बात सोचते हैं और कामनाएं पूरी नहीं होती है, इसलिए असंतुष्ट हो जाते हैं। बाबा ने कव्यक्त मूल में कहा है कि असंतुष्ट होने का मेन कारण है हम कंपेयर करते हैं, हमारा साथ दूसरों को देखते हैं, दूसरों के जो जो है मेरा पास नहीं है। कहते हैं ना, अपनी गाड़ी कब पुरानी होती है, मान लीजिए आपके पास एक कार है, वो कार कब पुराना होता है? हाँ, बाजू के घर में आए जो नई गाड़ी आ जाएगी तब आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है। तो हम जब कंपेयर करते हैं तो असंतुष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे कारण आप भी, आपने जो भी बताया वो भी है, तो इसका मेन कारण ये है कि ज्ञान की कमी है। अगर जिन आत्माओं के अंदर ज्ञान योग की शक्ति है, पूरा समझ है, ज्ञान है, बाबा जो ज्ञान दिया है कूट कूट के अंदर भरा हुआ है, उसका गहराई में गए हैं आप लोग, हम गए हैं, तो वो आत्मा असंतुष्ट नहीं होगा। जैसे बाबा कहते हैं कि स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, ये भी है। संतुष्टता में बहुत सारे बातें आती है, स्वयं संतुष्ट रहना, हमारा जो पुरुषार्थ, हमको ऐसा लगना चाहिए हमारा पुरुषार्थ से बाबा संतुष्ट, हमारा परिवार संतुष्ट, हम परिवार से संतुष्ट और हमसे परिवार भी संतुष्ट, दोनों बातें हैं। हम जहां सेवा करते हैं, जो भी हम जहां भी सेवा करते हैं, वहां पर हम जो भी सेवा साथी है या हमारा संबंध संपर्क में जो भी आत्मा है, संतुष्ट होके जावे और उनकी व्यवहार से भी हम संतुष्ट रहे। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा भी ज्ञान की कमी है, योग की शक्ति नहीं है, तो हम संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। तो अगर संतुष्टता नहीं है, कैसे हमारा चेहरा प्रसन्न रहेगा? मान लीजिए कोई ने कुछ आपको बोल दिया, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? अगर ज्ञान की कमी है तो खुश नहीं रह सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, बिना कारण कुछ भी इस संसार में नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ अनहोनी बात भी हो जाती है या असत्य बात भी सत्य हो सिद्ध हो जाता है, उसका पीछे भी राज है। जिनके साथ आप लोग रहते हैं वो उनके साथ या जहां जिनके साथ आप संबंध संपर्क में आते हो उनके साथ हमारा बहुत जन्मों का हिसाब किताब होता है। तो हमको ये तो ज्ञान तो है बुद्धि में, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं वो भूल जाते हैं। उसके लिए चाहिए योग की शक्ति। अगर एक गुण भी आप धारण करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो सभी गुण आ जाता है। तो उस समय पर आपको सहन शक्ति हो कि आपका बुद्धि में ये हो कि भाई इस आत्मा के साथ मेरा कोई पुराना हिसाब किताब था तो अभी चुप्त हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, मुझे ठीक चलना है, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलना है। जैसा बाबा कहते हैं जो स्वयं संतुष्ट वही रह सकता है जो हम बाबा के श्रीमत मर्यादाओं के अंदर चलते हैं, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। अगर मैं मर्यादा पूर्वक नहीं चला, श्रीमत अनुसार नहीं चला, भले दूसरों को मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन स्वयं का दिल तो कहता है, तो संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, कैसे बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसीलिए जो आत्मा है, इसीलिए बाबा कहते हैं जो स्वयं वही संतुष्ट रह सकता है। जैसे बाबा कहते हैं समय के अनुसार हम बीसों नाखून लगाकर हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। कैसे? हमारा समय, श्वास, शक्ति, जो कुछ भी हमारा पास खजाना बाबा ने दिया है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना। कहीं हम समय व्यर्थ कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं रहेगा जीवन, क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल समय है। आप लोग मधुबन में आए हैं तो अपना भाग्य बनाने के लिए ये जो पीरियड है, ये जो समय है, बहुत अनमोल समय है। एक एक सेकंड सफल कीजिए। यहां से दृढ़ संकल्प करके जाइए, कुछ विशेष पुरुषार्थ करने के लिए दृढ़ संकल्प कीजिए कि कभी भी एक दिन भी अमृत वेले मिस ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए जिस दिन आप अमृत वेले बहुत अच्छा अनुभव किया, आपका योग बहुत अच्छा रहा, आप श्रीमत के अनुसार चला, किसी के साथ मनमुटाव नहीं हुआ, आपने कोई भी मर्यादा उल्लंघन नहीं किया, ऑटोमेटिकली आपका जीवन में खुशी आएगी, प्रसन्न रहेंगे, तो आपको देख करके दूसरों संतुष्ट रह सकते हैं। दूसरी बात जो है, परिवार को संतुष्ट करना और स्वयं भी सेवा साथियों से संतुष्ट रहना, इसके लिए योग का शक्ति। इसलिए कहते हैं हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय बाबा ने कहा है कई मूल्यों में, अव्यक्त मूल्यों में, जो आत्माएं अमृत वेले उनका यथार्थ है, पावरफुल है, तो वो बाकी सभी बात बाबा पूरा कर देगा। अब सिर्फ अमृत वेले को ठीक करो, बाकी सब बात मैं ठीक कर देता हूं, बाबा ऐसा कहते हैं। तो क्या हम अमृत वेले पावरफुल बना रहे हैं, वो चेक कर लीजिए, वही मेन आधार है। और हमेशा आपको ये रहना चाहिए कि दूसरों को सम्मान दे। परिवार तभी संतुष्ट होता है, आपके साथ ही जो भी संबंध संपर्क में आते हैं वर्तमान समय, वो भी हर एक आत्मा, जो भी बाहर वाले हैं या लौकिक परिवार वाले हैं, अभी जो भी आत्माएं आ रहे हैं उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। जैसे आप कुछ भी कहो, कुछ भी बोल दो, वो सहन करे, उनके अंदर वो नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वमान में रहो, सम्मान दो, दूसरों को आगे रखो, तभी वो लोग भी खुश होंगे। तो अगर हम पुरुषार्थ में स्वयं अपने पुरुषार्थ में हम बिजी रहते हैं, क्योंकि जो भी समय मिला है उस समय को हम यथार्थ सफल करेंगे, वेस्ट नहीं कर देंगे, व्यर्थ में नहीं जाएगा, तो हमारा शक्ति जमा होती जाएगी। कल के अव्यक्त मूल्य में भी था ना सैटरडे की, बच्चे सेवा और याद बैलेंस हो, बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। अगर सेवा 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 करते रहेंगे, आप सवेरे अमृत वेले पावरफुल नहीं नेमिनाद बैठ के हैं, तो हमारा जीवन में सफलता का प्राप्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिनाइयां ज्यादा आती है। तो इसके लिए जो आधार है अमृत वेले, जो दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, तो आपके अंदर जैसे कहते हैं ना अर्जुन के पास सब प्रकार का अस्त्र शस्त्र था, सब प्रकार का ज्ञान की पॉइंट्स आपके बुद्धि में होना चाहिए। जैसे परिस्थिति आती है तुरंत आपका बुद्धि में स्मृति में रहे, नहीं ये मेरे लिए परीक्षा है, नहीं इस आत्मा के साथ मेरा कोई पुराना हिसाब किताब था, चुप तो हो गया, मुझे कुछ नहीं बोलना। जो कंट्रोलिंग पावर, वो सभी चीज जो है, जो आत्मा है बाबा के साथ अमृत वेले विशेष अभ्यास करते हैं, रूरिहान करते हैं, वो आत्मा के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तीसरी बात, हमारा जो 63 जन्मों से क्यों समस्या आती है, क्यों हम बच्चों के सामने समस्या आती है, कारण क्या है? शरीर का बीमारी आती है, समस्या आती है, कारण क्या है? हाँ, 63 जन्मों का हिसाब किताब है। तो अभी वो चुप करने का समय है, ना कि बढ़ाने का समय है। सदा ये स्मृति रहे कि मेरे जीवन में एक अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं किसी कारण से भी कुछ भी हो जाए मेरा जीवन में, मेरे को कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, मैं दूसरों के साथ हिसाब किताब नहीं बनाना है। हिसाब किताब कब बनता है? हिसाब किताब कब बनता है? कोई ना कोई मर्यादा का उल्लंघन हम करते हैं। जैसे बाबा ने हर चीज बताया है, कौन सी बात बाबा ने नहीं बताया? बच्चे कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, कैसे आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, आपका क्या संकल्प चलना चाहिए, बाबा ने सब कुछ बताया। ऐसा कोई बात है जो बाबा ने नहीं बताया? सब कुछ बताया है। इसको प्रैक्टिकल में लाना, हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो बहुत पढ़ाई करता है लौकिक में, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा भाषण करता है, उनको दुनिया में मार्क्स है। लौकिक में भी जो पढ़ाई अच्छा करता है और एज इट इज लिख देता है, प्रैक्टिकल में सुनाई देता है, उनको मार्क्स है। लेकिन हमारे ईश्वर विश्वविद्यालय का अलग प्रकार का मार्क्स कार्ड है। हमारा मार्क्स कार्ड किसके आधार पर है? हमारा प्रैक्टिकल व्यवहार में। एक होता है बोलना सोचना, एक होता है करना। सोचना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपका बुद्धि में बहुत, आप कोई भी टॉपिक के बारे में आप अच्छा सुना सकते हो या आपके अंदर ज्ञान है, वो बात नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, आपके व्यवहार कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम नहीं, मैं 100% परफेक्ट हो जाऊंगा, नहीं, कठिनाइयां आएगी, परीक्षाएं आएगी, लेकिन कभी भी जो हमारा अभ्यास जो है, हमारा पुरुषार्थ जो है, उसमें जैसे आज बाबा ने कहा ना, थकना नहीं, हारना नहीं, दिल से नहीं हारना है, कैसे भी परिस्थिति। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे रोज रात को सोते वक्त अपने आपका चार्ट को देखो, सारा दिन मैंने क्या किया है, लिखो, चिंतन करो, किस बात में मैंने आज फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, कारण क्या है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना चाहिए। अगर इस ब्राह्मण जीवन में जो आत्माएं दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो उनका पुरुषार्थ बंद हो जाता है। कभी भी जीवन में दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। सिंसियर प्रैक्टिस, अभ्यास, दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को संपूर्ण और संपन्न बनना ही है। एकांत में बैठिए, कभी कभी सोचिए कि बाबा मेरे से क्या चाहता है, क्यों बाबा मेरे से को सेलेक्ट किया है, कितने आत्मा है, कितने लोग है बाबा ने मुझे मेरी गांव से, मेरी जहां जिस शहर से मैं आया हूं उससे मेरे को क्यों सिलेक्ट किया, कितने ब्राह्मण हैं। तो बाबा को विश्वास है ना, आप पर आशा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, बाबा मुझे कैसा देखना चाहते हैं, सोचो। क्योंकि पुरुषार्थ में उमंग उत्साह बहुत बड़ी चीज है। अगर जिनके जीवन में पुरुषार्थ में उमंग उत्साह नहीं है, जीवन में उमंग उत्साह नहीं है, तो जैसे कि मुर्दे जैसा, कुछ नहीं है, नहीं मुझे करना है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए जीवन में, उमंग उत्साह रहना है। इसके लिए भी आधार है हमारा ज्ञान। तो जो मैंने कहा कि संतुष्ट रहना है, ये सबसे बड़ी चीज है। नेक्स्ट, इसके बाद में जैसे बाबा कहते हैं सबके प्रति शुभ भावना, सोचने की बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि क्या है, जैसे हम सोचते हैं उसके अनुसार हिसाब किताब बनता है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, बच्चे आप एक आत्मा के प्रति एक नेगेटिव संकल्प किया, आपके प्रति 20 लोग नेगेटिव संकल्प करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार किया, संकल्प तो चलता है ना, लेकिन उसको बंद करना, वही पुरुषार्थ है। बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना, उसके लिए आपको आंतरिक शक्ति चाहिए, जो आपका संकल्प किसी कारण से कुछ भी हो जाए नेगेटिव नहीं चलना चाहिए, व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए, उनके प्रति अशुभ भावना नहीं होनी चाहिए। आपके पास उसका चिंतन करो कि क्यों ऐसा हुआ, नहीं मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दुख दिया हूं इसीलिए ऐसा हो रहा, मैंने कभी ना कभी उनको उनके साथ कहा, नहीं अभी चुप हो गया, नहीं बाबा इनको भी सद्बुद्धि दो, बाबा मुझे सद्बुद्धि दो, मेरा हिसाब किताब चुप हो रहा है, लेकिन मेरे से संकल्प में भी सहा, संकल्प में भी हम लोग कि ना उस आत्मा के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना। अगर जो आत्माएं सबके प्रति शुभ भावना है, शुभ कामनाएं हैं, वही आत्माएं अंतिम समय में जो बाबा कहते हैं ना अभी मनसा सेवा, वही कर सकते हैं। मनसा सेवा इतना सहज नहीं है, आपके संकल्पों में व्यर्थ समाप्त, सदा समर्थ, सबके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग, वही आत्माएं मनसा सेवा कर सकते हैं। तो एक तरफ हमारा पूरा अटेंशन रहना चाहिए, किसी कारण से किसी आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब नहीं बढ़ाना चाहिए। जो भी हमारा साथ रहते हैं, जिस परिवार में है, जिस मान लीजिए आपका घर में 4 लोग है, आपका 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, वो आपको दुख देने के लिए ही जन्म लिया है, आप समझ लीजिए। अगर आपके साथ हिसाब किताब नहीं होता था, आपके घर में जन्म नहीं लेते थे, आपके साथ नहीं रहते थे, और कहीं रहते थे। जिनके साथ हमारा हिसाब किताब रहता है वहां पर ही हम जाते हैं, वहां पर से ही होता है, ये हमेशा बुद्धि में रहना चाहिए। मेरे को परीक्षा आएगी, मेरे को पास होना है, मेरे को बाबा से सर्टिफिकेट लेना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। तो अगर ये स्मृति में है कि जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आते हैं, उनसे परीक्षाएं आएगी, उनको ही मैं सेटिस्फाई करना है, उनके साथ ही मेरा हिसाब किताब है, तब अगर उनसे परीक्षा भी आएगी ना, तो आप घबराएंगे नहीं। जब आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है, नहीं नहीं मेरे को बहुत प्यार से बात करेंगे, मेरे को रेस्पेक्ट देंगे, मैं जो भी बोलूंगा वो सुनेंगे, मेरे बेटी है, ये मेरा लड़का है, ये बहुत अच्छा लड़का है, मैंने इनको प्यार से ये सारा काम करेगा, लेकिन वही आपको दुख देगा। क्यों? उनके साथ हिसाब किताब, इसलिए आपका घर में जन्म लिया है, तो उनके प्रति भी आपकी सदा शुभ भावना हो, ये बाबा का बच्चा है, ये बाबा का बच्ची है, ये बाबा रक्षा करेगा, मैं निमित्त मात्र इनको देखभाल कर। इसके जो भी आधार है, फिर मैं वही बात रिपीट करना चाहता हूं, हमारा अमृत वेला योग बहुत अच्छा हो, पावरफुल हो। देखिए आज दादिया कोई नहीं है, लेकिन जो दादियों के साथ संबंध संपर्क में है, देखा है, उन लोगों की स्टेज क्यों ऐसी थी, कारण क्या है, क्या वो लोग पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर ऐसा पढ़ाई किया है, उनके पास ऐसी क्या चीज थी वो लोग इतना आगे गए, कारण क्या है, बाबा के साथ प्यार, सच्ची दिल की प्यार, बाबा के साथ हमारा अटूट प्यार हो, हमारा जो दिल की बात भावा को ही सुनावे, जो योग का आधार भी प्यार है, इसके कारण वो लोग इतना आगे चले गए। तो हमारा भी बाबा के साथ इतना प्यार होना चाहिए। तो बाबा को, बाबा के साथ भी प्यार कब कैसे पड़ता है, कैसे बाबा के साथ प्यार पड़ता है, तेबन में आ जाते, राइट, बाबा के साथ हमारा प्यार ज्यादा हो, दिनों दिन ज्यादा हो, बाबा को साथी का अनुभव करना, बाबा से मदद लेना, बाबा कहते दिल से बाबा कहो मैं आ जाता हूं। जब आपको बहुत मुसीबत है, बहुत समस्या है, बहुत कठिनाई है, ऐसे समय पर अगर बाबा मदद करता है तो आपको बाबा की याद ऑटोमेटिकली आ जाती है। बाबा से जो प्राप्तियों को स्मृति करो तो बाबा की प्यार बढ़ती है। लेकिन जब बाबा का मदद, वो बच्चों को ही बाबा मदद करेगा जो आप एक्यूरेट श्रीमत के अनुसार चलेंगे। जैसे घर में चार बच्चे हैं, कुछ बच्चे, तीन बच्चे बहुत बदमाश है, वो काम नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं, एक लड़का जो है बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, आपकी बात सुनेगा, तो प्यार किसको करेंगे, जो नेचुरल होता है ना। तो ऐसे ही हमारा बाबा के, हमारा हर व्यवहार, हर कार्य, हर संकल्प, हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार हो तो ऑटोमेटिकली बाबा आपको मदद करे। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब भी आपको ऐसी समस्या आती है बाबा को याद करके बुलाइए, बाबा आप मदद करना, मेरे से ये नहीं हो रहा है, तो बाबा जरूर मदद करेगा। हर एक के पास अनुभव है, ऐसा नहीं है अनुभव नहीं है। तो सबसे आधार है अमृत वेले का योग। दूसरी बात, जो ज्ञान का चिंतन, जो हम रोज मुरली क्लास, मुरली सुनते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ अपना ही कुछ सिद्धांत होना चाहिए जीवन में। क्या ऐसा आप एकांत में बैठ के चिंतन कीजिए कि क्या मैं, मेरे अंदर क्या कमी है, वो उसको मिटाने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, और क्या मैं क्यों ब्रह्मा कुमार बनाऊं। अपने आप से, जैसा बाबा कहते हैं ना, अपने आप से बातें करो, अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए, उमंग आना चाहिए, नहीं मुझे करना है। तो ऐसे ही रोज मुरली सुनने के बाद कोई ना कोई एक बात के ऊपर पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं इस सप्ताह में कुछ भी हो जाए सदा हर्षित मुख रहूंगा, एक हफ्ता में विशेष अटेंशन, जैसे एक हफ्ता मैं सबके प्रति पॉजिटिव सोचूंगा। जिस लक्ष्य से आप लेंगे, जिस लक्ष्य लेकर कोई ना कोई पॉइंट लेकर के आप पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे, उसमें ही परीक्षा आएगी, आप देखना चाहे तो। क्योंकि माया, हम जब संकल्प करते हैं ना, माया भी सुनती है, तो उस समय पर अगर आप उसमें पास होंगे तो आपको बहुत खुशी आएगी, खुशी रहेगी, उमंग उत्साह बढ़ेगा, वो पुरुषार्थ करना चाहिए। तो मेन बात यह है कि अमृत वेले का योग पावरफुल, और दूसरा आपका समय 100% सफल करो, कहीं भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बुद्धि में सिर्फ आपका जीवन में सवेरे से शाम तक क्या किया मैंने, एक तो सेवा होना चाहिए, नहीं तो बाबा की याद होना चाहिए, मुरली का चिंतन होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण कईयों के पास बहुत समय है, लेकिन अपने आप को सोच करके उसका टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आपका समय कहीं ना कहीं परचिंतन, परदर्शन या फालतू बातों में कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है, तो लीकेज है, तो आप भरपूर नहीं हो सकते हैं या प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, ना बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे बाबा ने परसों मुरली में कहा ना, लीकेज वो नहीं होना चाहिए। चेक कर लीजिए, जो इसलिए बाबा कहते हैं जो आत्माएं सेवा में बिजी रहते हैं वो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। सेवा में बिजी करने का भी अपने हाथ में है। आप चाहे तो कैसे मुझे रहना है, सारा दिन 24 घंटा कैसे बिताना है, आपके हाथ में है, वो आप देख लीजिए। जो व्यक्ति अपना समय को सफल करता है, जो अपना संकल्प को सफल करता है, श्रेष्ठ संकल्प करता है, जो व्यक्ति अपना शक्तियों को सफल करता है, वो सदा खुश रहता है। हर एक आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं है, वो विशेषता को बाबा के कार्य में यूज करना है। जो भी समय दिया है, शक्ति दिया है, चाहे कोई भी सेवा कीजिए, स्थूल सेवा कीजिए, कर्मणा सेवा कीजिए, उसमें भी बाबा मार्क्स देगा। लेकिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए, समय वेस्ट नहीं करो, व्यर्थ नहीं करो, फालतू बातों में, फालतू चिंतनों में नहीं जाना चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ का जो भी हम बच्चों को दिया है मर्यादा श्रीमत, जो भी सारा दिनचर्या दिया है, एक मुरली में बाबा ने कहा जो अगर दिनचर्या का भी आप उल्लंघन करते हो, दिनचर्या का भी ऊपर नीचे होता है, वो उसको भी अपवित्रता कहा जाता है। हमारा सवेरे से अमृत वेले से लेकर रात तक हर बात हमारा एक्यूरेट श्रीमत के अनुसार हो, तब हम प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। संतुष्टता गुण भी है, शक्ति भी है। जो आत्मा संतुष्ट रहते हैं उनके सामने कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी परीक्षा हो, वो पास हो सकता है। तो आप लोग सभी मधुबन में आए हैं तो यहां वरदान भूमि है, यहां पर एक विशेष दृढ़ संकल्प करके जाइए, यादगार रहे आपको। 2020 में मैं मधुबन गया था, मैं वहां से मेरा ये परिवर्तन आ गया, ऐसा एक विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए। तो भाई जी का कुछ विशेष अनुभव है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी क्लास खत्म कर रहा हूं। ओम शांति। आइए भाई जी।
ओम शांति। छोटा सा अनुभव है 10 मिनट का। शरीर का नाम है बीके रंजन, उड़ीसा के वासी हूं, सेवा के लिए आया हूं। कुछ साल पहले सीवियर एक्सीडेंट हुआ था मेरा। एक बड़ी गाड़ी आप देखते हो जो ट्रक वगैरह आता है ना, जो 10 पहिया वाला 10 व्हीलर, वो चढ़ गया था मेरे ऊपर। मैं बाइक में था, प्रोफेशनली मैं लेक्चरर हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को। तो इसे ट्यूशन से कल से लौट रहा था, तो वो टक्कर हो गया। तो क्या होता है, बाबा ने कैसे मदद की, वो जो ट्रक होता है ना, आगे तो आपका कितना होता है उसका, दो दो पहिया, पीछे सब चार चार पहिया थे। सिटी के भीतर होता है, लोग भी बहुत थे, तो वो पहले टक्कर दिया मुझे। बाइक जाकर गिरी 10-12 फुट दूर। तो तो उसका जो पहला पहिया था, राइट एंड लेफ्ट होता है ना, पहले राइट पहिया मेरे ऊपर आ गया, इस दिस आर्म इसके ऊपर। तो क्या हुआ, बाबा ने अगर चढ़ जाता तो मैं वहां परमधाम चले जाता, बट बाबा ने क्या किया, मैं देखा वहां पे, अनुभव किया वो जो पहिया मुझे छुआ नहीं, मेरे ऊपर से 2 इंच ऐसे एयर में चला गया। ये सब सिर वगैरह सब, जैसे कि आपका देख रहे हैं ना, ये सब एक्सीडेंट हो गया था, बाल वगैरह, और उसका उसमें राइट पहिया से टकरा कर फिर लेफ्ट की तरफ में आ गया, बहुत स्पीड था, तो लेफ्ट के ऊपर उसका लेफ्ट पहिया चढ़ गया इसके ऊपर मेरे, उसमें भी चढ़ा था थोड़ा सा, इसमें भी चढ़ा, तो दोनों मेरा ऑपरेशन हो पाया, सब प्लेट वगैरह, ये जो दो आप वेस्ट देख रहे हैं ना, इसमें बोन ग्राफ्टिंग किया है, तो टोटली बॉडी से ब्लीडिंग बहुत हुआ। तो मैंने सोचा चलो हो गया छुट्टी, चलते हैं कहाँ, बाबा का, बाबा बोलता है जैसे अंतमति सुगति, तो ठीक है, तो मरना तो हो तो बाबा को याद करके मरेंगे ना, चिंता करके काहे मरेंगे। तो ब्लीडिंग वगैरह बहुत हो रहा था, बहुत ब्लड ड्रेन हो गया, तो बाबा को उस टाइम बाबा के परमधाम में बाबा के स्वरूप में एकाग्र हो गया, सब भूल गया, सब भूल गया, मैं कुमार हूं, पापा मम्मी वगैरह सब भाई बहन जो बाबा, सब भूल गया, मैं सब भूल गया, बाबा को याद किया। तो याद करते करते तो एक्सीडेंट हो गया, तो फिलहाल आप जानते हो उस टाइम क्या नर्वस हो जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका मेरा सेंस चला गया। तो आफ्टर 3 डेज मैं देखा मैं हॉस्पिटल में हूं, कौन लाया क्यों क्या लाया कुछ नहीं मालूम। तो 3 डेज में क्या हुआ, मुझे लगा जैसे ब्रह्मा बाबा आकर मेरे ऑपरेशन कर रहे हैं, अरे तुम्हारा नाम क्या है, मैंने ट्रांस जैसा हो गया, बाप दादा आ गए, तुम्हारा नाम क्या, जैसे ना एनेस्थेसिया वगैरह देते हैं, क्योंकि पूरा आपका बॉडी को पूरा वो चीरेंगे पूरा, क्योंकि प्लेट आपका लगेगा तो कुछ लगेगा तो पूरा बॉडी को वो ये करेंगे, इधर इधर चारों तरफ बोन ग्राफ्टिंग भी हुआ था ना, तो ऐसे लगा मुझे बाबा आए थे, जैसे बाबा बोलता ना पहाड़ को राई के राई से फिर रुई करो, तो ऐसे लगा कोई आया हाथ, कल जैसे अव्यक्त मूल्य बाबा क्या बोला, बच्चे जब सेवा करते हैं तो सिर दबाता है ना बाबा, तो वैसे ही बाबा ने आकर जैसे मुझे लगा जैसे 3-4 दिन में बाबा ही कुछ किया, तो ठीक हो गया। तो आजकल क्या करते हैं ना, जो आपका जो सर्जरी वगैरह होते हैं स्टैपलिंग वगैरह, आज पहले जमाने में ये होता था क्या, सिले के टाइप के होता है सिला, अभी सिलाई विलाई नहीं, अभी क्या है वो आपका जो बुक में ना स्टैपलर लगा, तो सारा बॉडी में स्टैपलिंग था मेरा, कितना पेन होता हुए, फिर भी एक दिन भी मुरली मिस नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोल दिया था करीब 7 महीने तुमको हॉस्पिटल में क्या करना है, बट बाबा की मदद है और बाबा की याद से 14 डेज में मैं रिकवरी हो गया, क्योंकि जो इंटरनल घाव था वो सूखने के लिए 4-5 महीने चाहिए, किंतु 14 डेज में वो सब सूख गया। तो डॉक्टर तो छोड़ता नहीं था, फिर भी मेरा तो सूख गया था, तो उसने देखा नहीं इसका तो ठीक हो गया तो छोड़ दिया। और दूसरा अनुभव है, मेरी माँ लौकिक माँ वो 30 साल से मेंटल हॉस्पिटल में थी, मेंटल हॉस्पिटल जानते हो, हाँ पागल का ना, 30 साल से जब से मैं छोटा था वो पागल हो गई थी, क्योंकि पापा मम्मी के भीतर आजकल होता ना सब घर घर में, तो मैं ज्ञान में आया उसके बाद मम्मी को थोड़ा थोड़ा, वो इतना पावर कंडीशन में, हमारे वहां पे भी हम भाई बहनों को पूछेंगे तो बोलेंगे इतना, मैंने वो पूरा चिल्लाएगी जैसे अनकंट्रोल्ड। तो जब से मैं ज्ञान में आया तो उसको तो कुछ कह नहीं सकोगे ना, बोल भी नहीं सकोगे ज्ञान, क्योंकि अनकंट्रोल्ड। तो बाबा का सब तो बाबा का मैजिक है, देखो उसको ऐसे पानी चार्ज करके ऐसे उसके दिमाग के ऊपर जो हम सम्मान करते ना मास्टर अलमाइटी करके, हाँ हाथ रख करके जो भाई वो जी बताते हैं, करते करते अभी देखो वो 3 बार मधुमेह आकर चली गई, ज्ञान में 7 साल से है। तो ये बाबा का मदद है, तो इसीलिए तो अभी क्या हुआ, जब वो ठीक हो गई तो घर लोग विघ्न आ गए, जैसे भाई जी बोले ना विघ्न आ गए, घर लोग बोले कि ये क्या कर रहा है, ये शायद आजकल बोलते हैं तांत्रिक वांत्रिक वगैरह लगाकर मेडिसिन, क्योंकि आजकल डॉक्टर जो बोलेगा वही होगा, डॉक्टर बोल रहे खाओ, दिमाग का उनका उनका पैसा चाहिए ना, तो डॉक्टर की निंदा नहीं कर रहा हूं, बट ये हो रहा है आजकल टोटली, टुडेज ऑल आर मनी माइंडेड, ठीक है। तो वो बोल रहा है नहीं खाओ 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 मेडिसिन खाओ, बट ये बाबा इनको ठीक कर दिया है, किसको, माता जी को। तो मेरे और घर में क्या हो गया, थोड़ा काउंटरैक्ट, थोड़ा ये हो गया। तो मुझे थोड़ा, मैं एक तरफ है और मेरे सब भाई बहन जी जो भी है मेरे सब, वो अलग है, अलग रहते हैं, बाबा के ज्ञान को पसंद नहीं करते। तो उन्होंने वैसा झूठा रिपोर्ट करके मुझे थाने में ले लिया, क्योंकि ये घर में हंगामा कर रहा है, क्योंकि मम्मी मेरे साथ थी ना, वो चाहते थे मम्मी को मारे, करंट दे, जैसे होता है ना टॉर्चर करे, हमारा घर ऐसा है। तो वो थाने में मुझे ले गए, तो पुलिस को बोले कि तुम मारो इसको, मेरी खुद की बहन बोली उसको मारो, बहुत मारो, क्योंकि वो हिसाब किताब है ना भाई भी बोले ना। तो पुलिस ने हाँ ठीक मारेंगे, क्या क्या कहा कंप्लेन है, ऐसा ऐसा मारो इसको, मारो ये हमको ये करता है, ये करता है, घर में डिस्टर्बेंस करता है, ये करता है, ठीक। तो उन्होंने रिपोर्ट दे के चले गए, घर चले गए। तो पुलिस ने मुझे बिठाया आराम से, मैं भी बिठाया, मैं उसको देखता रहा, वो मुझे तू तो अच्छा आदमी दिख रहा है, क्या हुआ उसका दिमाग में क्या, आधे घंटे में मुझे छोड़ दिया, जाओ। सिर्फ इतना बोला कि माँ को ज्ञान नहीं धरा, ठीक है। तो ये मेरा अनुभव था। तो जब मैं घर लौटा तो बहुत शर्मिंदा थी बहन। और तो क्या हुआ, एक मैजिक हुआ, अभी तो कोरोना पीरियड चल रहा है ना, माँ लौकिक माता जिस डॉक्टर के पास जाती थी, वो डॉक्टर पूरा शेर की तरह है, कुछ नहीं सुनेगा, पेशेंट का कुछ नहीं सुनते, वो किसका सुनते हैं, पेशेंट के साथ जो आएगा उसका सुनेगा, अगर वो झूठ बोल देगा तो वो मेडिसिन चढ़ा देगा, समझ में आया नहीं, अगर मैं पागल नहीं हूं तो, बट मेरे साथ जो आएगा वो बोलेगा नहीं ये पागल है, तो वो पागल का मेडिसिन देगा, कुछ नहीं समझेगा। तो वो कोरोना में हो गया उसका काम तमाम, डॉक्टर ने उसकी वाइफ का हो गया, तो वो खुद भी पागल हो गया। दूसरा क्या हुआ, जो बहन मेरे ऊपर जो थोड़ा ईस की थी, वो पहले पहले छोटी पन ज्ञान लेती लिया था, अभी बड़ा हो गया तो कलयुग संघ में, आज कलयुग ना, उसका शादी भी टूट गया, जिसके साथ शादी होना था वो भी कोरोना में परमधाम चले गए। हाँ, तो अभी वो चाहती है मैं बाबा का होकर रहूं, ठीक, ठंडी हो गई है और घर में शांति हो गई है। माँ का डॉक्टर क्यों लेंगे, डॉक्टर तो चला गया परमधाम, वो भी डिप्रेशन हो गया, तो अभी सब वन टाइप ऑफ बाबा के हो गए। ये मेरी थी अनुभव। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। एक मिनट बाबा की याद में।